सावलीची आसना कोवळे से उनमी सुर नाही संगती एक तरी धुन मी ज्यात डोका वेन मी ते मनाचे बिंब मी जन्म हे लावेल हा ते उसासे चिंब मी नाव नाही जास काही तो नोखा रंग मी जो पुरेल जन्म सारा तो सोबतीचा चंग मी मीची मज व्यालो कोटा पुरिया आलो मीची मज व्यालो कोटा अंतरीचे हास्य मी मीची मज व्यालो पोटा पुलिया आलो मीची मज व्यालो पोटा पुलिया आलो मीची मज व्यालो पोटा पुलिया
शताब्दी में दक्षिण भारत में कभी विजयनगर साम्राज्य था और उस विजयनगर साम्राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम था तेनाली रामा, जो इतना बुद्धिमान था कि उसके विरोध में जितने लोग थे चाहे वो लोग कितने भी षड्यंत्र करें हमेशा वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से उन सबको पराजित कर देता था। उसी राज्य में एक घटना का वर्णन है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुआं खरीदता है, पैसे देता है और कुआं खरीदता है, और खरीदने के बाद जब उसमें से पानी निकालने लगता है तो जिससे कुआं खरीदा वो कहता है, मैंने तुमको कुआं बेचा था, पानी नहीं, पानी मेरा है, मैंने तुमको कुआं बेचा था, पानी नहीं, पानी तुम नहीं ले सकते इस कुएं से। वो तो हतप्रभ, उसको समझ भी नहीं आता है अब करूं क्या। बात तो सही कह रहा है, हमने कुआं खरीदा था, पानी थोड़ी खरीदा था। तो वो तो परेशान हो जाता है, अब क्या करूं, इतने पैसे चुकाए और कुआं है पर पानी नहीं ले सकते। तो वो तेनालीरामा के पास जाता है, कहता है ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ करो। तेनालीरामा सोचता है, अच्छा और तेनालीरामा वहां जाता है उस कुएं के पास, और जिससे कुआं खरीदा था फिर से उससे प्रश्न पूछता है, आपने तो कुआं बेच दिया ना। तो व्यक्ति कहता है, कुआं बेचा पर पानी थोड़ी बेचा। तो तेनालीरामा कहता है, तो फिर ठीक है, क्योंकि कुआं इस व्यक्ति का है तो तुमको हर मास इस कुएं में पानी रखने का किराया चुकाना पड़ेगा। या तो पानी बाहर निकालो या तो हर मास कुएं का पानी का किराया दो। संसार में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुए, एक से बढ़कर एक, जिनकी बुद्धि बेमिसाल थी, कोई हिसाब नहीं था। तीव्र बुद्धि थी, कुशाग्र बुद्धि थी, परंतु ये सांसारिक बुद्धि है। और भगवान जब धरा पर आते हैं तो सांसारिक बुद्धि नहीं देते। कौन सी बुद्धि देते हैं, कौन सी बुद्धि देते हैं? दिव्य बुद्धि देते हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात वो बुद्धि जिसने भगवान को पहचाना है, वो बुद्धि जिसने भगवान को जाना है, वो परमात्मा जो साधारण वेश में आया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, हे अर्जुन जब मैं साधारण वेश में आता हूं, अवजानन्ति मुझे नहीं जानते, वो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी हैं। ऐसे साधारण वेश में आए हुए परमात्मा को जिसने जान लिया, परख लिया, समझ लिया, अपना बना लिया, वो बुद्धि है दिव्य बुद्धि। तो संसार में बुद्धिमान बहुत है, इंटेलेक्चुअल्स की फौज खड़ी है, परंतु वो भगवान को नहीं जान सकते। वो जागतिक बुद्धि है, वर्ल्डली इंटेलेक्ट है, सांसारिक बुद्धि है, डिवाइन इंटेलेक्ट नहीं है। महाभारत में तीन प्रकार के बल की चर्चा है, बाहुबलम, बुद्धि बलम, आत्मबलम। सबसे शक्तिशाली माना गया है संसार में बाहुबल को, परंतु बाहुबल इतना शक्तिशाली नहीं है। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो उससे अधिक शक्तिशाली होता है, जो प्लान कर सकता है, जिसके पास बुद्धि है, स्मार्ट है, ये संसार की धारणाएं हैं। परंतु उससे भी परे एक तीसरा बल भी है। व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो सकता है, आईएएस की एग्जाम पास कर सकता है, परंतु भ्रष्टाचार को मना करना, वो जो लाच दी जा रही है, घूस दी जा रही है, उसको ना करना, इसकी शक्ति सांसारिक ज्ञान से नहीं आएगी। उसके लिए तीसरा बल चाहिए, और वो तीसरा बल है आत्मबलम, योग बलम। तो भगवान जब आते हैं धरती पर, तो हमको क्या देते हैं? दिव्य बुद्धि। आज सुबह की अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1985। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा आते हैं और दो गिफ्ट देते हैं। कौन कौन से? दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। दिव्य नेत्र इसकी चर्चा अगले संडे की मुरली पर है, जो कि 23 तारीख की मुरली है, 23 जनवरी 1985 की। ये सारी मुरली केवल दिव्य बुद्धि पर है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी कौन किसको देख रहा था? बाबा ने क्या टाइटल दिया हमको आज? कौन है, कौन है? इस जहान के नूर हो, नूर अर्थात प्रकाश, रोशनी, आलोक। तुम इस जहान के प्रकाश हो, यदि तुम न रहो तो संसार में अंधियारा छा जाएगा। तुम्हारे बगैर ये संसार वीरान है। तुम संसार के प्रकाश हो। और जहां तुम होंगे वहां अंधकार नहीं हो सकता। तुम अंधकार को मिटाने वाले हो। ज्ञानांजनशलकया चक्षुरुन मिलितम ये न तस्मे श्री गुरुवे नमः। इस संसार के तुम गुरु हो। अज्ञानंदतिमिरांधस्य, संसार में अज्ञान का अंधियारा है, तिमिर है, उस तिमिर को भस्म करने वाले तुम हो। तो सबसे पहला ही सवाल आज की अव्यक्तवाणी से, हम इस संसार के कौन है? नूर है, प्रकाश है, आलोक है। हम नहीं तो संसार में अंधियारा। कितना ऊंचा सम्मान है। जहां से मैं चलूं वहां प्रकाश होगा। और रात नष्ट होगी। अंधेरे में बहुत भय लगता है। रात में क्या लगता है? भय। डार्कनेस के बड़े दोष है। तिमिर में एक तो भय लगता है, दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है, कभी भी ठोकर लग सकती है। अगर कोई कहे दिन के उजाले में किसी जंगल से जाओ तो जा सकते हैं, और कोई कहे रात में निकलो तो भय लगता है। रात के साथ भय जुड़ा हुआ है। रात्रि सरोज साले आखेड़ चांदने अंस। रात में अंधियारा का खेल भयभीत करता है चित्त को। तो संसार में रात चल रही है, चारों ओर अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में हम प्रकाश है, जहान के नूर है। तो इस बात को बार 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 याद रखना है कि हम इस संसार के प्रकाश है, नूर है। मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। छोटा सा संकल्प है पर बहुत पावरफुल है। मैं आत्मा और मुझसे चहु ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। और जहां प्रकाश होगा वहां भय नहीं होगा, असुरक्षा नहीं होगी, डर नहीं किसी बात का, गिरेंगे नहीं लोग, टकराएंगे नहीं किसी से। और बाबा ने इस मुरली में कहा, बाबा जब आते हैं तो दो गिफ्ट लेके आते हैं। कौन सी गिफ्ट? सबसे पहली दिव्य बुद्धि और दूसरा दिव्य नेत्र। बुद्धि के कर्तव्य क्या है पहले इसकी चर्चा करेंगे। क्या कर्तव्य? मन के तीन कर्तव्य है, बुद्धि के सात कर्तव्य है। मन सोचता है, थिंकिंग, फील करता है भावनाएं, और तीसरा इच्छा करता है वांटिंग, थिंकिंग फीलिंग वांटिंग। मनोविज्ञान कहता है मन के ये तीन कर्तव्य। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के सात कर्तव्य है। सबसे पहला जज, बुद्धि क्या करती है? जज करती है, फैसला करना। जैसे जज होता है ऊपर बैठा, केस सामने आती है, दो पक्ष आते हैं, उसको फैसला करना होता है ये राइट है या ये राइट है, तो ये काम बुद्धि का है। इस मुरली में बुद्धि के लिए बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातें बताई है, और उन सभी सूक्ष्म बातों का इन सात कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि बुद्धि ही मलिन है, बुद्धि ही पतित है, बुद्धि ही विकारी है, बुद्धि ही गिर चुकी है और बुद्धि ही संसार में जुड़ी हुई है, तो जजमेंट भी गलत होंगे, जीवन के बड़े बड़े फैसले गलत होंगे। उसके बाद में दूसरा कर्तव्य अंडरस्टैंडिंग, समझना। बुद्धि का दूसरा कर्तव्य है समझना। हम चीजों को समझते किससे हैं? बुद्धि से समझते। और जितनी बुद्धि शार्प होगी, समझ उतनी ही शार्प होगी। और अध्यात्म का ज्ञान यदि आत्मसात करना है तो बुद्धि बहुत शार्प चाहिए, और शार्प बुद्धि वो है जो प्योर बुद्धि है। जितनी बुद्धि में प्योरिटी ज्यादा, उतना ज्ञान ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अध्यात्म की ढेर किताबें संसार में पड़ी हुई है, हजारों मुरलियां पड़ी हुई है, कितना भी पढ़ो अंदर कुछ नहीं घुसता। क्यों? बाबा ने कहा है शेरनी का दूध, सोने का बर्तन चाहिए, कान सोने के बर्तन बन जाए। जहां जहां ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जा रहा है, वहां वहां से ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर लेना। तुलसीदास ने लिखा है जिनके श्रवण समुद्र समाना, प्रभु कथा सुनने के लिए जिनके कान समुद्र की तरह है, सब कुछ ग्रहण कर लेते। प्रभु अनंत हरि, अनंत हरि कथा अनंता, उसकी महिमा अनंत है, और उसकी कहानी को, उसके जीवन चरित्र को, उसके सिखाए हुए ज्ञान को समझने के लिए हमारे नेत्र हमारे कान भी अनंत हो तो वो ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं। तो बुद्धि का दूसरा कर्तव्य है समझना, तीसरा कर्तव्य है डिसीजन, निर्णय करना। पहला बताया जज, अभी बता रहे हैं डिसीजन। जजमेंट और डिसीजन में अंतर है। जजमेंट अर्थात दो व्यक्तियों के बीच कुछ हो रहा है और हमें फैसला सुनाना है जो जज करता है। डिसीजन अर्थात चॉइस है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, सेंटर पर रहना है या घर पे रहना है, जॉब करना है कि नहीं करना है, यहां रहना है या मधुबन जाना है। निरंतर एक फैसला है, सुबह उठते ही ये करूं या वो करूं, ये करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते, क्या करूं, ये काम बुद्धि करेगी निर्णय। उसके बाद में परखना, डिस्क्रिमिनेट करना, बुद्धि का काम है। बुद्धि परखती है सार है असार है, नित्य है अनित्य है, सत्य है असत्य है। यह आदत मुझे कंटिन्यू करनी है कि छोड़नी है, इस आदत से टाइम वेस्ट हो रहा है, पकड़ के रखू इसको कि छोड़ू, यह संबंध है अनैतिक है, भगवान ने मना किया इस तरह के संबंध के लिए, इसको पकड़ के रखू या छोड़ दू। जितना डिले करेंगे डिसीजंस में उतना जीवन पीछे रह जाएगा। फास्ट डिसीजन, एक पति अपनी पत्नी से कई सालों से कह रहा है सोच रहा हूं संसार को छोड़ दूं और चला जाऊं जंगल में हमेशा के लिए। रोज पत्नी से कहता है कि मुझे इस संसार में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, छोड़ के चला जाऊं। एक बार पत्नी का भाई आता है और उनके सामने भी वो कहता है पत्नी से, अपनी पति, कि मैं तो सोच रहा हूं संसार को छोड़ दूं। वो जो पत्नी का भाई है वो कहता है संसार को ऐसे थोड़ी छोड़ा जाता है। वो कहते फिर कैसे छोड़ा जाता है? वो कहता है ऐसे, और निकल जाता है हमेशा के लिए धक से। निर्णय ही नहीं कर पाते ये आदत अच्छी है या नहीं है। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इंटरनेट पर, पकड़ के रखूं या छोड़ू, निर्णय ही नहीं कर पाते। जिस तरह की दिनचर्या है उसमें बीमार पड़ रहे हैं बार बार, सेम रखूं या छोड़ू। जिस तरह की जीवनचर्या है उसमें विकर्म ही विकर्म हो रहे हैं सूक्ष्म, पकड़ के रखूं या छोड़ू, कितना सहन करूं या विद्रोह करूं, बगावत कर दूं, समझ में नहीं आ रहा। ये सारे काम किसके हैं? बुद्धि के परखने के। तो बुद्धि का चौथा कर्तव्य है परखना, टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिसर्न। अगला कर्तव्य है धारण करना। बुद्धि क्या करती है? धारण करती है। किसी भी चीज की धारणा करना बुद्धि का काम है। एक है समझ लेना, बुद्धि ने समझ लिया, परंतु आगे की स्टेप है उसके धारण भी करना है। उसके लिए भी बुद्धि बहुत प्योर चाहिए, बहुत पवित्र चाहिए। जितनी बुद्धि पवित्र होगी इतना ये ज्ञान धारण होगा, नहीं तो केवल थियरी है हमारे पास। वस्त्र पहन लिए और बैच लगा दिया। दादी जानकी ने कभी कहा था ब्रह्मा कुमार बनना बहुत आसान है, ब्रह्मा कुमारी बनना बहुत आसान है, परंतु ब्राह्मण बनना कठिन है। ब्राह्मण अर्थात धारणा युक्त। केवल बैच लगा लिया और कपड़े पहनने से नहीं होता है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज ने कहीं कहा है यदि भगवे वस्त्र पहन के ही साधु बनता है तो ये कुत्ते को भी भगवे वस्त्र पहन दो वो भी साधु बन जाएगा। धारण करना। उसके बाद अगला कर्तव्य है बुद्धि का रैशनलाइज, तर्क वितर्क करना। ये बुद्धि का काम है तर्क करना, ये सही है या गलत है, बुद्धि लगाना, तर्क करना, रीजनिंग करना। साइंटिफिक तर्क चाहिए। कोई भी चीज किसी और ने कह दी और हमने कर लिया और हो गया, हर चीज के बारे में सोचना है। बाबा ने कहा है कुछ दिन पहले मुरली में था, मैं जो सुनाता हूं जज करो राइट है कि रॉन्ग है। अगर ये समझते हो राइट है तो धारण करो, अगर समझते हो वो चीज रॉन्ग है तो अनराइटियस को छोड़ दो। कुछ दिन पहले मुरली थी ये, जज करो। ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। सत्वच महाराज नहीं कहना है यहां पर, हर चीज को रैशनलाइज करना है। और लास्ट मेमोराइज। मेमोराइज अर्थात कंठ कर लेना, रैश मेमोराइज करना कोई भी चीज को, ये बुद्धि का काम है। जैसे छोटे बच्चे पोएम मेमोराइज कर लेते हैं पूरी की पूरी बाय हार्ट, पूरी याद रहती उनको। और ज्ञान भी मेमोराइज करना होता है, इसलिए पाठ किया जाता है, हरि पाठ। पाठ अर्थात एक दिन नहीं, बार 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 रामायण का पाठ होता है। क्यों? बार 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 बार। तो बुद्धि का सबसे पहला काम है जज करना, बुद्धि का दूसरा काम है अंडरस्टैंड करना, समझना चीजों को, तीसरा काम है निर्णय करना, टू डिसाइड, चौथा कार्य है डिसर्न, डिस्क्रिमिनेट करना, परखना, फिर धारण करना, इम्बाइब। छठवां कार्य है रैशनलाइज करना, अर्थात तर्क वितर्क करना, यह सब बुद्धि करती है। और सातवां कर्तव्य है बुद्धि का मेमोराइज कर लेना चीजों को। तो ये सात कर्तव्य बुद्धि के हैं। आज की मुरली है दिव्य बुद्धि पर, और इस सारी मुरली में बाबा ने दिव्य बुद्धि की उपमा पांच चीजों से की है। भगवान जब सिखाता है, समझाता है कोई बात, उदाहरण दे दे के समझाता है, क्योंकि उसकी बातें निराकार है और हमको साकार चीजें से ही समझ में आता है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी निराकार पॉइंट्स को संसार की साकार वस्तु रूपी खूंटी पर टंगाता है, यहां के उदाहरण देता है जो हमारी बुद्धि गम्य हो, समझे बुद्धि, नहीं तो उसकी बातें तो निराकार है, कैसे समझ में आएगी, समझ में नहीं आती उसकी बातें, बहुत सूक्ष्म है और बहुत गुई है। इसलिए भगवान जब आता है तो उदाहरणों में समझाता है, कहानियों में समझाता है। पूरा बाइबल में ढेर सारी कहानियां हैं जो जीसस क्राइस्ट ने समझाई, हर चीज में एक कहानी बताता है कि ये ऐसा होता है तो वैसा होता है, और लास्ट में दिखाया है जब उसको सूली चढ़ने वाली है उसके 12 घंटा पहले वो अपने सभी शिष्यों से मिलके कहता है, जब अंतिम समय आएगा मैं उदाहरण देना बंद कर दूंगा। और फिर शिष्य आपस में बातें करते हैं, देखो अब उसने उदाहरण देना बंद कर दिया है, अब ही इज टॉकिंग इन प्लेन लैंग्वेज, ही हैज स्टॉप टॉकिंग इन पैराबल्स, अब वो कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा है, शायद ये अंतिम घड़ी है, शायद ये अंतिम समय है, और उसके बाद ही उसे पकड़ कर लेके जाके सूली में लटकाया जाता है। ये वाक्य बाइबल में आया है कि जब अंतिम समय आएगा मैं उदाहरण नहीं दूंगा। सारी अव्यक्त वाणियों में बाबा ने हजारों उदाहरण दिए हैं, इसी मुरली में कितने सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे वो लोग हिमालय पर जाकर राख छोड़ते हैं, जैसे वो लोग नदी पर जाकर राख छोड़ते हैं ताकि सब जगह फैल जाए उदाहरण। और अब वो चुप हो गया है, कितने समय से बोलता ही नहीं, बाबा ने बोलना बंद कर दिया है, अभी कोई मुरली नहीं है। और लास्ट की जो मुरलियां चली 2016-17 की, उसमें उदाहरण है ही नहीं, जो कुछ कहना था वो 70s और 80s की अव्यक्त वाणियों में कह दिया, गहरे गहरे उदाहरण दिए। इस मुरली में चार बातों से तुलना की बुद्धि की, सबसे पहले ये बुद्धि गिफ्ट है, गिफ्ट अर्थात उपहार, तोहफा, भेंट, प्रेजेंट। दूसरा, ये बुद्धि छत्र छाया है, संसार के उदाहरण है। ये बुद्धि कोई गिफ्ट होती है क्या? गिफ्ट तो इस संसार का शब्द है, वो यहां के वस्तु और शब्दों का प्रयोग करता है अपनी निराकार और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को समझाने के लिए। तीसरा, बुद्धि लिफ्ट है। चौथा, बुद्धि क्या है, प्लेन है। कितना अच्छा उदाहरण दिया। और पांचवा, बुद्धि पात्र है, सोने का पात्र। ऐसे ये पांच उदाहरण दिए मुरली में, और इसी के आधार से हम मुरली की चर्चा करेंगे। सबसे पहला, बाबा ने कहा जब भगवान धरती पर आता है तो उनको दो गिफ्ट देता है, उसमें से एक गिफ्ट है दिव्य बुद्धि। इस दिव्य बुद्धि को कहीं माया चुरा तो नहीं लेती? माया की चतुराई, माया के भोले तो नहीं बन जाते, भूल तो नहीं जाते, माया छीन तो नहीं लेती? गिफ्ट है, बहुमूल्य गिफ्ट, और जितना गिफ्ट बहुमूल्य होता है चोरों की नजर होती है उसकी तरफ, और जब गिफ्ट चोरी हो जाता है तो बाबा ने कहा जो बात सहज है वो मुश्किल लगने लगती है। कठिन लगने लगती है, जब माया ये बुद्धि ही चुरा कर ले जाती, क्योंकि जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई उसको क्या कहेंगे। कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, समझता है क्या? रावण को लास्ट तक समझाते रहे सब लोग, सीता को लौटा दो, सीता को लौटा दो, सीता को लौटा दो, माना क्या? मरते मरते इंद्रजीत भी बोलते गया कि वो राम भगवान है, दे दो। कुंभकर्ण भी बोल के गया कि उसको दे दो, सीता को नहीं समझा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी, विवेक ही खो गया था, तर्क वितर्क ही नहीं कर पा रही थी, परख ही नहीं सक रही थी बुद्धि कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है। संसार को ही सब कुछ समझ लिया, संसार ही सार है, यहां के संबंध, ये परिवार, ये पति, ये पत्नी, ये मित्र, ये सब ही सत्य है। बाबा ने कहा यह छीछी संसार है, प्यार केवल मुझसे करो बस, और किसी से नहीं। बाइबल में लिखा है, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक मां बाप को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है, आउट। जो अपने लौकिक बहन और अपने लौकिक भाई को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं है, आउट। भगवान के महावाक्य है लव मी अबोव ऑल। और दादी प्रकाशमणि की एक बात हमको बहुत याद रहती है, दादी ने इतनी अच्छी बात कही है कि बाबा से ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं करना, ये पहला वाक्य। और दूसरा, कोई दूसरा हमको बाबा से ज्यादा प्यार ना करे, कोई दूसरा हमको बाबा से ज्यादा प्यार ना करे। बाबा छूट गया और हमारे प्यार में फंस गए, हम ही उसको सब कुछ लगने लगे, यह भी नहीं होना चाहिए। अपने में किसी को नहीं फंसाना है, उसको लगने लगे यही बाबा है, यह भी डिसर्विस है। तो दिव्य बुद्धि, सात कर्तव्य, सातों कर्तव्यों में दिव्यता, तो फर्स्ट पॉइंट, बुद्धि एक गिफ्ट है, माया इसे चुरा ना ले। और यह गिफ्ट ऐसी है, कभी धोखा नहीं देती, कभी दुख नहीं देती, ये गिफ्ट। बाकी गिफ्ट अगर खो जाए कोई भी चुरा सकता है, इस गिफ्ट को कोई नहीं चुरा सकता। माया चुरा सकती है वो दूसरी बात, पर कोई स्थूल व्यक्ति इसको चुरा नहीं सकता। ये स्थूल किसी सौगात के जैसी नहीं है। और जिसके पास दिव्य बुद्धि है, इससे बड़ा वरदान और कुछ नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं। जहां दिव्य बुद्धि है वहां सब कुछ आ जाएगा, जहां बुद्धि ही भ्रष्ट है, जहां वो है जो कुछ है वो भी सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाया है, एक ऐसी परिस्थिति आती है जब बहुत जवान होते हैं, पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, इतना सारा कर्जा, मां बहन और वो अकेले, और कोई जॉब नहीं, बहुत गरीबी, कई कई दिन तक भूखे रह रहे हैं। और फिर याद आती है रामकृष्ण की, उनके पास जाते और कहते हैं क्या करूं, वो कहते हैं अरे तुम एक काम करो, मां है ना काली, उसके पास जाओ और उसको धन मांगो, वो दे देगी तुमको। कहते अच्छा, वो जाते हैं और मां के सामने प्रार्थना करने लगते हैं, हे मां भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग दे, बुद्धि दे, और वापस आते। तो गुरु कहते हैं क्या मांगा, धन मांगा ना, कहते वो तो भूल ही गया मांगना, फिर जाओ। फिर जाते हैं और फिर बैठते हैं और धन मांगने का सोचते हैं, पर मुख से निकलता है ज्ञान दे, वैराग दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। फिर वापस आते, गुरु कहते फिर एक बार जाओ आप। फिर वही मांगते, वो कहते हैं धन तुम्हारे भाग में नहीं है, मत मांगो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। संसारिक बुद्धि संसार की चीजें मांगती है, दैवी बुद्धि केवल दैवी चीजें मांगती है। मांगती तो है नहीं, अगर मांगने का समय भी आए तो भगवान से मांगना ही है तो प्रभु प्रेम मांगो, वैराग मांगो, ज्ञान मांगो। बाबा ने कहा तुम्हें मांगने की तो जरूरत ही नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया है। तो ये गिफ्ट कोई चुरा ना सके, पर माया चुरा लेती है, माया चतुराई करती है, माया के भोले बन जाते। वैसे है बहुत भोले बच्चे, भोलेनाथ के भोले बच्चे बहुत अच्छा, परंतु माया के भोले नहीं बन जाने। ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिससे बुद्धि ब्लंट हो जाए, काम करना ही बंद हो जाए। जब जब आत्मा कोई विकर्म कर लेती है, बुद्धि का काम करना बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं, कंफ्यूजन। तो सबसे पहला गिफ्ट है, गिफ्ट को कैसे रखेंगे, बहुत संभाल के, और जितना मिला है उसको और बढ़ाना है। जैसे दुर्योधन पूछता है अपने गुरु से कि अर्जुन आपका सबसे ज्यादा चहेता क्यों है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों है, विद्या तो आप सबने हमको सबको सिखाई एक साथ, मैं क्यों नहीं आपका सर्वप्रिय शिष्य, या अर्जुन को ही आप प्रिय क्यों समझते हो, ऐसा पक्षपात क्यों। द्रोणाचार्य कहते हैं तुम सबको मैंने समान ज्ञान दिया, पर अर्जुन को जितना सिखाया वो वहां तक नहीं रुका, वो और आगे बढ़ा। जितना सिखाया वहां तक उसने छोड़ा नहीं, उसको और उसने आगे बढ़ाया अपनी प्रार्थना साधना से, तपस्या से। इसके लिए तो महाभारत के युद्ध में दिखाया है कि द्रोणाचार्य हार रहे हैं बार बार, दुर्योधन पूछता है वो आपका शिष्य है उससे क्यों हार रहे हो आप, उसको तो आपने सिखाया ना, तो जरूर आपसे ज्यादा ज्ञान उसमें होना चाहिए, आपको उसके ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, आप उससे क्यों हार रहे हो, भयभीत क्यों हो रहे हो। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं उससे भयभीत हूं, क्यों, अर्जुन मेरा शिष्य है, मैंने उसको सिखाया पर फिर भी मैं उससे डरता हूं, क्यों क्यों, क्योंकि वो धर्म के शिविर में है और मैं तुम्हारे शिविर में हूं अधर्म के, मैंने तुम्हारा नमक खाया है और अर्जुन सत्य के मार्ग पर है। उसने जितनी हार्डशिप, जितना कष्ट सहन किया इतने वर्षों में, मैं तो यहां तुम्हारे राजभवन में बैठा हूं ऐशो आराम में, उस कष्ट ने उसे मुझसे अधिक शक्तिशाली बना दिया है। यह द्रोणाचार्य का उत्तर था। तो इस गिफ्ट को क्या करना है, छिपा के रखना है माया से, संभाल करनी है, इसको बढ़ाना है और शक्तिशाली बनानी है। बुद्धि इतनी तीव्र इतनी शक्तिशाली हो जाए कि परख ले ये सार है ये असार है, असार को छोड़ो। एक है शरीर के सुख, एक है आत्मा के सुख, क्या चाहिए, दो ही मिलेंगे, एक मिलेगा दोनों में से, एक है काम एक है राम। काम चाहिए तो राम को छोड़ो, फिर जाओ काम की नगरी में और डूब जाओ उसमें जैसे संसार डूबा है। दूसरा, बाबा ने इसमें चेकिंग के लिए भी कहा, अपनी इस खुद की चेकिंग करो इस गिफ्ट के लिए। दूसरा, दिव्य बुद्धि क्या है, छत्र छाया, परंतु जब माया की छाया पड़ती है तो छत्र उड़ जाता है। कितनी अच्छी भाषा है बाबा की, बाबा की भाषा अलंकारिक है, कविता है मुरली, और भगवान साहित्य सम्राट है, उदाहरणों में समझाता है, अलंकारों में समझाता है कि जैसे माया की छाया पड़ेगी ये छत्र उड़ जाएगा। सत्तो रजो का प्रभाव होगा तो दिव्य बुद्धि धारण नहीं कर सकेगी। गिफ्ट में और एक बात कही है, जब यह दिव्य बुद्धि तुम्हारे साथ है तो ज्ञान स्वरूप की धारणा, ज्ञान की धारणा, याद की धारणा तुम कर सकोगे, सर्वशक्तिवान बनोगे, अचल अडोल रहोगे, अटल रहोगे, अगर ये गिफ्ट तुम्हारे पास है तो। दूसरा बताया छत्र छाया, तो दिव्य बुद्धि क्या है, छत्र है, इस दिव्य बुद्धि की छत्र छाया में चलना है। यह हटा और माया का साया पड़ा तो सब गड़बड़ होगा, गलत गलत निर्णय एक के बाद एक, रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग डिसीजन, कितने सारे रॉन्ग डिसीजन ले लिए जीवन में। अभी अभी हम एक जगह सेंटर पर गए थे एक, तो वहां हमको एक माता मिली जिसकी उम्र थी 70 वर्ष, 5 साल में से ज्ञान में है, परंतु वो मम्मा की स्टूडेंट थी, जगदम्बा मातेश्वरी की स्टूडेंट है, ज्ञान में आई 60s में, मम्मा की स्टूडेंट बनी, ज्ञान छोड़ दिया, जाकर शादी की, बच्चे सारा परिवार, और अभी उम्र 70 साल की है, तो अभी 5 साल से वापस ज्ञान में आई। क्या कहेंगे, इससे तो अच्छे हम हैं। लेट आए फिर भी ठीक, पहले आते थे तो बाबा कहते ना, अगर अच्छा है, कई जो भी आता है बाबा से कहता था, बाबा हम लेट हो गए, बाबा कहते थे अच्छा है, पहले आते थे ना भागंती हो जाते थे, बहुत अच्छा है। 7 दिन का कोर्स करंती, सेंटर आवंती, मुरली सुनंती, ज्ञान धारण करंती, पवित्रता की प्रतिज्ञा करंती, दूसरों को ज्ञान सुनावंती, कोर्स करावंती, और अहो मम माया भागंती। इससे तो ये ठीक है जब आए तब, तो रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं जीवन में बहुत सारे। और क्यों लिए, क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं थी इसलिए शायद। तो दूसरा है छत्र छाया, तीसरा है बुद्धि क्या है, लिफ्ट। बाबा ने कहा जैसे कोई लिफ्ट खराब हो जाती है तो क्या होता है, बीच में अटक जाती है, ना ऊपर ना नीचे, और फिर क्या करना पड़ता है, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। यहां तुम्हें मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, हिम्मत की टांग फिर चल नहीं पाएगी। सारे उदाहरण है समझाने के लिए। बुद्धि जैसे कि लिफ्ट है, और वहां पे एक स्विच है, कौन सा स्विच, संकल्प का स्विच ऑन करो तो ये बुद्धि रूपी लिफ्ट तुमको ऊपर पहुंचा देगी सहज। अगर बीच में अटक गई तो परेशान होंगे, दुखी होंगे। इसके लिए ये लिफ्ट बीच में ना अटके, संकल्प का स्विच पावरफुल हो, ताकि लिफ्ट तुमको ऊपर कहीं पर भी। बाबा ने कहा क्या करो, वो चलो फ्लाइट में कहा, परंतु इसमें भी ऊंची अवस्था में चले जाओ इस लिफ्ट से, बुद्धि रूपी लिफ्ट से। चौथा उदाहरण दिया है दिव्य बुद्धि क्या है, क्या है, प्लेन। जैसे वो प्लेन से हिमालय पर जाते हैं राख डालते हैं, नदी पर जाते हैं राख डालते हैं, ताकि सब जगह चले जाए, वैसे ही तुम ऊंची स्थिति की चोटी पर चले जाओ। यहां पर भी स्विच क्या है, संकल्प। ऊंची स्थिति की चोटी पर चले जाओ दिव्य बुद्धि से, और वहां से लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शुभ भावना और शुभ कामना की किरणें फैलाओ। ये काम दिया है दिव्य बुद्धि का, जो कल शाम को हमने देखा था सकाश, वो सूर्य जो फैलाता है उसे प्रकाश कहा जाता है, और मास्टर ज्ञान सूर्य जो फैलाते हैं उनको सकाश कहा जाता है। तो दिव्य बुद्धि से बहुत ऊंची स्थिति में चले जाओ, और क्या करो, वहां से लाइट हाउस माइट हाउस बनकर किरणें फैलाओ। ये चौथा फ्लाइट। पांचवा कंटेनर, पात्र, सोने का पात्र। इसमें सिल्वर कॉपर कुछ भी मिक्स ना हो, गोल्डन वेसल रहे दिव्य बुद्धि। तो सारी मुरली में ऐसे 5 उदाहरण दिए, और बुद्धि को समझाने की कोशिश की बाबा ने, कि बुद्धि में जब मिक्सचर हो जाता है, और इवन फ्लाइट के लिए कहा उसमें साधन चाहिए, आजकल हर चीज डबल रिफाइंड है, तो पेट्रोल भी डबल रिफाइंड चाहिए, जरा भी मनमत और परमत का किचड़ा हुआ तो ये फ्लाइट सीधा क्रैश गिर जाएगा। ये सुना ना सारा आज, कि नहीं, चेहरे से तो लग रहा है पहली पहली बार सुन रहे हैं, अभी अभी सुनी ना सुबह मुरली, ऐसी थी ना कि कुछ और थी, यही थी ना। तो हमारी बुद्धि गिफ्ट है, सौगात है। अगर कोई हमें बहुत बहुमूल्य गिफ्ट दे दे तो उसको क्या करते हैं, कितना प्रिजर्व करके रखते हैं, अंदर रखते हैं, बचा के रखते हैं। वैसे भगवान आता है, उसने दिव्य बुद्धि का गिफ्ट दिया, सबसे बहुमूल्य खजाना है, इससे बहुमूल्य और कुछ भी नहीं। अगर हमसे कहे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो एक ही चीज मांगना बाबा से, कि बुद्धि निरंतर सालिम रहे, बस दिव्य बुद्धि रहे, ताकि जीवन में जो कुछ निर्णय लूंगा, डिसीजंस लूंगा, वो राइट हो, परख सकूं चीजों को, समझ सकूं, धारण कर सकूं, तर्क कर सकूं, याद रख सकूं मुरली को, फैसला कर सकूं, जज कर सकूं। बुद्धि के सातों कर्तव्य निरंतर होते रहे, और ये अपने आप तब होंगे जब बुद्धि में दिव्यता होगी, पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, उसमें मनमत परमत का किचड़ा ना हो। तो इस गिफ्ट को बहुत प्रिजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है, बिल्कुल हाथों से जाने ना पाए, दिल की डिब्बी के अंदर रख देना है। छत्र छाया, इस बुद्धि की छत्र छाया में सारे डिसीजन लेना। तीसरा बताया बुद्धि क्या है, क्या है, लिफ्ट। जब भी लिफ्ट से जाओ तो वहां एक अभ्यास किया जा सकता है, 84 जन्मों की सीढ़ी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, चढ़ रहे नीचे आ रहे। संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में अभ्यास करना है ज्ञान का। उसके बाद यह दिव्य बुद्धि क्या है, फ्लाइट है, उड़ना है बहुत आकाश में, बहुत ऊपर, नीचे आना नहीं है, क्योंकि नीचे गंदगी है, शरीर गंदगी है, शरीर को हाथ नहीं लगाना है। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी पाव ऊपर रखो। एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं, शायद जानते होंगे, जगदीश भाई बताते थे बार बार, उस कन्या का जो पनघट पर है और पानी भर रही है, एक कुएं पर पानी भर रही है, एक युवक आता है कहता है प्यास लगी पानी दो, वो कहती है पानी मैं दूंगी पर एक शर्त है, और शर्त यह है अंग से अंग ना लगे। वो कहता है वादा, और वो उसे पानी देती है और वो पानी पीता है और जाता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों के मां बाप दोनों की शादी बिना उनको बताए कर देते, और उस युवक की और उस कन्या की शादी हो जाती है, और वो शादी के बाद आमने सामने आते, और उस कन्या जैसे उस भाई को, उस कुमार को देखती है, वो कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग ना लगे, अपना वादा याद रखना। मिट्टी है शरीर, बहुत खेल लिया इसके साथ, बहुत हाथ लगा लिया इसको, बहुत लाड़ प्यार कर लिए इसके, इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि को ऊपर उड़ाओ, फ्लाइट ऊपर ऊपर ऊपर। कुछ दिन पहले मुरली थी साकार, जिसमें बाबा ने कहा था आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब क्या करो, इसको चार्ज करो। और मोबाइल को यदि चार्ज करना है तो फास्ट चार्जिंग कब होता है, जब जब फ्लाइट मोड पर डाल दो। तो मोबाइल को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फास्ट चार्जिंग करना है। किस मोड पर डालना होता है, फ्लाइट मोड। और जब मोबाइल फ्लाइट मोड पे होता है तो ना हमसे कोई कुछ कांटेक्ट कर सकता है और ना हम किसी और से, और जब फ्लाइट मोड पे होगा तो फास्ट चार्जिंग होगी, और इधर चार्जिंग भी लगा है और इधर से बातें भी चालू है तो टाइम लगेगा बहुत। अगर चाहते हैं कि आत्मा की बैटरी फास्ट चार्ज हो जाए, जितनी आत्मा नष्ट मोह है उतनी फास्ट चार्जिंग होगी। इस संसार के सारे मोहबंधन से परे सारे लगाव कट गए। फास्ट उन्नति होगी। ब्राह्मण कितने समय से पुरुषार्थ करते फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ते? कारण एक है, लगाओ। सेवाओं से लगाओ, सेवा केंद्र से लगाओ, व्यक्ति से लगाओ, हर चीज में लगाओ है, लगाओ। इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बंधन में फंसे। डिपार्टमेंट, व्यक्ति, पद, पोस्ट, स्थान, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो जितना नष्ट मोह है उतना ही वो क्या है, तीव्रता से आगे बढ़ता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात फ्लाइट, अपने आप को बीच बीच में फ्लाइट मोड पर डाल देना है। कोई दूसरे हमसे कांटेक्ट ना कर पाए, हम दूसरों से कांटेक्ट ना कर पाए, स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म। एकांत में अगर हम बैठे और हमको कहा 6 घंटा एक कमरे में रहो, मोबाइल भी नहीं है कुछ नहीं, बस बैठे रहो, देखना फिर किसकी याद आती है। कमरे में बंद व्यक्ति जो करता है एक्चुअली वो उसका चरित्र है। लोगों के सामने जो दिखाता है वो चरित्र नहीं है। चरित्र कौन सा है? जब बंद कमरे में अकेला अपने घर में है, कोई नहीं देखने वाला, तब वो क्या कर रहा है, तब वो क्या देख रहा है, यहां पर क्या सुन रहा है, वो उसका वास्तविक चरित्र है। तो दिव्य बुद्धि गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि छत्र छाया है, दिव्य बुद्धि लिफ्ट है, दिव्य बुद्धि लाइट है, और दिव्य बुद्धि कंटेनर है, गोल्डन कंटेनर, दिव्य पात्र, सुनहरा पात्र है। इसमें जरा भी एलॉय मिक्स नहीं चाहिए, मनमत परमत जनमत, केवल बाबा ने क्या कहा बस उसी का गहराई से चिंतन करना है, तब यह कार्य होगा। तो यहां पर मुरली पूरी होती है। पर्सनल मुलाकात की है कुछ बाबा ने, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि। और तुम्हारी सृष्टि कौन है? तुम्हारी सृष्टि कौन है? बाबा। जैसे जल की मछली है, उससे पूछा गया जल क्या है, वो कहती है मुझे पता ही नहीं जल क्या है। जल क्या है उसको पता ही नहीं, जल है क्या, उसने कभी पढ़ा है खाली जल के बारे में, पर उसे पता नहीं जल क्या है। तो वो अपने सीनियर मछलियों के पास जाती है पूछने के लिए कि जल क्या है। सीनियर मछलियां कहती हमने भी किताबों में पढ़ा था पर हमको भी नहीं पता क्या है। कभी तो भी बचपन में किताबें जब पढ़ी थी कॉलेज में, मछलियां कहती है, पर वो है क्या मुझे भी नहीं पता। नदी की मछलियां है, नदी की मछलियां कहती है कि तुम हेडक्वार्टर जाओ, मतलब सागर, वहां सीनियर जो है ना वो बताएंगे मछली कि जल है क्या। तो छोटी सी मछली तैरते तैरते हेडक्वार्टर पहुंचती है और वहां पर बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वरिष्ठ भाई बहन, उनसे पूछती है ये जल क्या है। तो वरिष्ठ मछली कहती है अच्छा जल अभी बताती हूं, और उस छोटी मछली को लेके किनारे पर फेंक देती है जल के बाहर, तड़पने लगती है छोटी सी मछली। अब मरने को है तो फिर मछली बड़ी मछली उसको अंदर लेती है और उससे कहती है अब समझ में आया जल क्या है। ये जो है इर्द गिर्द ऊपर नीचे आगे पीछे यही जल है और यही तुम्हारा जीवन है, और जल अर्थात वो जो तुम्हारा जीवन है और इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई जीवन नहीं। वो जो हमारे ऊपर है और वो जो हमारे नीचे है, भगवान ही संसार है, एक बाप ही संसार है और वही जल है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप ही तुम्हारी सृष्टि है, वही संसार है। इसको परिभाषित नहीं करो कि वो है क्या, वो कैसा है, इतना जान लो वो है तो तुम है, वो नहीं तो तुम भी नहीं। तुम्हारा अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है। और एक बहुत अच्छी बात यहां बाबा ने कही है, संसार में कोई कितना भी साथी हो सदा नहीं रहेगा, एक बाप ही है जो हर संकल्प में और हर सेकंड में तुम्हारे साथ है। कोई कितना भी कहे डिंगे हाके कि मैं तुम्हें सदा साथ दूंगा, देगा क्या? इन वंस ग्रेटेस्ट आवर ऑफ नीड वन इज अलोन। जब हमें संसार में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसी की, उस समय हम अकेले ही होते हैं, कोई भी साथ नहीं रहेगा तब, न पति न पत्नी न बच्चे न मित्र न संबंधी, हम अकेले हैं संसार में। एकांगी पगडंडी है, एकला चालो रे, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, ये उड़ान है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। यहां कोई साथी नहीं है, दिखावा मात्र है, तेरे चाहने वाले कब्र में तुझे डाल देंगे। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, कब्र ही तेरी मंजिल। ये सब बाराती है, संसार के सारे संबंध मतलब के संबंध, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं क्यों करते हैं? स्वार्थ, स्वार्थ भरा है प्यार में, सच्चा प्यार और निस्वार्थ प्यार, और हर समय प्यार करने वाला एक परमात्मा ही साथी है बस। उसके अतिरिक्त हमारा ना कोई साथी था, न है, न कभी रहेगा। पुष्पारानी दीदी थे नागपुर के, वो कहते थे अपने दिल में सोफा कभी भी मत रखना, चेयर रखना। सोफा रखोगे तो तीन चार लोग बैठेंगे, एक चेयर रखना जिसमें केवल बाबा बैठे। दिल में क्या रखना? एक चेयर जिसमें एक भगवान ही बैठे बस, उसके अतिरिक्त तो कोई कुछ नहीं, सब कुछ वही है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज ने एक जगह लिखा है, वही मेरा चुलता काका मामा नातू नाती सब कुछ, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वही सब कुछ है मेरा, उसके अतिरिक्त तो मेरा कोई कुछ है ही नहीं संसार में, सर्वस्व वही है। तो एक को ही साथी बनाना, और संसार से वैराग लाने की विधि है संसार के प्रति दोष दृष्टि। बड़ी खोट है इस संसार में, स्वार्थ है यहां पर, अपना अपना कहते हैं पर सब मतलब ही है, सब धोखेबाज है, हर एक ने कभी ना कभी धोखा दिया है जरूर, जितने लोग हैं संसार में कभी ना कभी तो दिया है, संकल्पों के तल पर या मुख से या कर्म से, फिर भी उन्हीं के पीछे पागल है। क्यों वैराग नहीं आता है? विषय विराग ईश्वरे अनुराग। तो बाबा ने कहा बाप तुम्हारा हर सेकंड और संकल्प साथी है, जो दूसरा कोई नहीं हो सकता, वही संसार है, वही सृष्टि है। दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई तुम्हारी। तो इस तरह से यह व्यक्त मुरली आज की। और एक लास्ट बात, हर दिन बाबा से नए नए रूप से मिलना है, जिसकी हम एक एक्टिविटी अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास। हर दिन उससे नए नए रूप से मिलना है, एक ही बस बाप टीचर सद्गुरु नहीं, अलग अलग रूप से, अलग अलग संबंध से, अलग अलग बातों से उससे मिलन बनाना है। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे और बाबा से कहो कि तू हर दिन नए रूप से आके मिल। कभी वो चौकीदार है, कभी पहरेदार है, कभी गाइड है, कभी खिवैया है, कभी साथी है, कभी कोच है, कभी ट्यूटर है, कभी टीचर है, कभी दोस्त है तो कभी भाई है। एक माता कहती थी, कल बताया शायद यहां पर, वो कहती थी कि मेरा बाबा से एक संबंध सबसे ज्यादा है, कौन सा? भाई का। कैसे? उसने बाबा को अपना भाई बना के रखा। बाप नहीं है, पति नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटा कम, सद्गुरु कम, टीचर कम। वो कहती थी बाबा 30 साल तक मेरा भाई रहा। कैसे? वो कहती थी मेरा पति मुझे इतने तकलीफ देता था पवित्रता के लिए, सारा संघर्ष ब्रह्मचर्य का था जब से ज्ञान में आई, और जब जब झगड़ा हुआ तब तब मैंने बाबा को याद किया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और तब तब बाबा ने आके रक्षा की। तो अलग अलग संबंध बाबा से निभाना है। तू भेट नारे रोज रोज नव्याने, तू भेट नारे रोज रोज नव्याने। ओम शांति।
कधी फुले होऊन ये तू चखदी तिन्ही ऋतू
बोटाने दूर कर